समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार निखिल जी, और सब श्रोताओं को भी नमस्कार।
और इस कार्यक्रम में समूचे देश से हमारे श्रोता कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। हमारी फोन लाइन्स खुल चुके हैं स्टूडियो की। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड और नंबर 2331444, दूसरा नंबर है 2371716 और एक और नंबर है 2342101050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
अभी अगर हम खबरों को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल डेंगू के लाखों मामले रिपोर्ट किए जाते हैं और कुछ मामलों में रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। डेंगू एक ऐसा नाम है जो हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचने वाला रहा है, लोगों का ये ध्यान आकर्षित करता है और इसलिए आज हम डेंगू पर बात कर रहे हैं। इस बीच हमारे आज के पहले श्रोता नई दिल्ली से धर्मवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
नमस्कार।
नमस्कार।
पहले तो आप सभी को, आकाशवाणी पूरी टीम को हैप्पी दिवाली।
जी, आपको भी मुबारक हो। प्रश्न पूछिए।
मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि हम लोग शहर में हैं, दिल्ली में हैं, गांधीनगर क्षेत्र ऐसा है जो क्षेत्र पूरा एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है कपड़ों की, तो यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा है, बड़ी है। और मार्केट में क्या है कि दुकानदार सब चले जाते हैं अपने अपने दुकान बंद करके 6-7 बजे। अब उसके बाद उनकी छत पे क्या क्या डेंगू पनप रहे हैं, उसकी देख रेख वो लोग नहीं करते।
जी डॉक्टर साहब,
अब देखिए ऐसा है, ये हम सबका, नागरिकों का कर्तव्य है कि हम लोग ध्यान रखें कि डेंगू ना फैले और इसके लिए जो डेंगू मच्छर करता है वो मच्छर को पनपने ना दें। इसके लिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे छत हो, चाहे नाली हो, चाहे आपके घर के आसपास की जगह हो, चाहे घर में गमले हो या घर के अंदर कहीं बाल्टी या टूटा मग है, तो इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए और पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास कहीं भी आपको प्याला या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ या गमला टूटा हुआ जिसमें पानी लिखता है तो उसको कृपया उलट दें, जिससे कि पानी नहीं रहे। पानी अगर इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छरों का पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है और डेंगू की फैलने की आशंका भी कम हो जाती है।
हिसार हरियाणा से हमारे अगले श्रोता है आज के राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका सवाल क्या है?
नमस्कार जी निखिल जी और डॉक्टर अनूप प्रकाश जी और लेडी हार्डकोर्ट, नमस्कार जी।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
ये जानना चाहता है जी, जो प्लेटलेट्स कम होने से क्या डेंगू मलेरिया का घोषित हो सकता है, या ये जानना था। और दूसरा, लीवर किडनी पे क्या असर पड़ता है? और दूसरा, ये तीसरा सवाल था कि जो कितने दिन तक ये बुखार का असर रहता है, काफी लोग ऐसे है इसमें घबरा जाते हैं, तो इसने और कुछ घरेलू उपाय बता दे डॉक्टर साहब तो वो भी अच्छा है।
बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है इनके।
हाँ, जरूरी सवाल है ये। पहली चीज कि बुखार इस समय लाजमी है बारिश के मौसम में, और इस समय जब बारिश थम जाती है उसके बाद बुखार के बहुत कारण होते हैं। आपने सही फरमाया, कुछ में प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं और कुछ में प्लेटलेट नहीं भी कम हो सकते हैं, लेकिन मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां इस समय आम रूप पर रहती हैं और इन सभी में किसी भी स्टेज में बीमारी के प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो सिर्फ प्लेटलेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू बुखार है, और भी कई तरह के बुखार हो सकते हैं जिसको हमें जांच करनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर से मशवरा जरूरी है।
इन्होंने ये पूछा था, ये भी प्रश्न था इनका, कि इसका हमारे लीवर या किडनी पर भी कोई असर पड़ता है।
तो आमतौर पर साधारणतः जो ये वायरल बुखार हैं डेंगू के, चिकनगुनिया के, ये आमतौर पर पे तकलीफ पैदा करते हैं लेकिन जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक मरीजों में आप समझिए 10% 10% लोगों में करीब जो है जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें जैसा आपने ठीक फरमाया गुर्दे पे या जिगर पे भी नुकसान हो सकता है और कभी कभार दिमाग पे भी एक नुकसान होता है। और 1% जैसा कि निखिल जी ने शुरू में कहा था, 1% लोगों में हम सब कोशिश करने के बावजूद भी मरीज को बचा नहीं पाते हैं।
आगरा से राजीव लवानिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव जी, आपका प्रश्न पूछिए।
निखिल जी नमस्कार।
जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
नमस्कार
डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि लोग जितना डेंगू को खतरनाक समझते हैं, हमने कभी सुना है कि डेंगू उतना खतरनाक रोग नहीं है, ज्यादा ही हालत बिगड़ने पर ही लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना घर पर ही ज्यादातर ये रोग ठीक हो जाता, तो ये कहाँ तक सच है?
देखिए, आपने जो सुना है वो ठीक सुना है, लेकिन ये है कि कब जो है डेंगू बुखार आज की तारीख में अगर आपको दिक्कत नहीं है, कब ये दिक्कत में तब्दील हो जाए या कब जटिलता हो जाए ये पता नहीं चलता है, और आदमी को रोकथाम करने की प्रक्रिया नहीं पता होती है, इसलिए परेशानी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आमतौर पर बुखार हो तो बुखार को नीचे उतारना जरूरी है, उससे जो होने वाला पानी का नुकसान होता है या जैसे अभी पिछले श्रोता ने पूछा था, गुर्दे पे या जिगर पे या दिमाग पे प्रभाव होने से पहले उसमें पानी की मात्रा की कमी ना हो, तो ये जरूरी है कि आप मरीज को सही समय पे डॉक्टर के पास लेकर के जाएं। इसलिए मैं एक मिनट और लूंगा इसमें।
जी जरूर।
अगर आपको जो है मरीज को तकलीफ हो रही है, चक्कर आता है, बेहोशी की हालत होती है, या फिर मरीज को जैसे शरीर पे दाने निकल आए या खून कहीं से भी निकले या दौरा पड़े या मरीज नहीं खा पा रहा है या पी पा रहा है, उल्टियां हो रही हैं या वैसे भी नहीं खा पी पा रहा है, तो इस सिलसिले में आप डेंगू बुखार को मरीज को फौरन डॉक्टर साहब के पास लेके जाएं और भर्ती करवाएं, क्योंकि नहीं तो वो जो अभी कंट्रोल वाली स्थिति होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और फिर जटिलता या मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हरियाणा सोनीपत से राम अवतार शर्मा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। राम अवतार जी, आपका सवाल क्या है?
डॉक्टर साहब नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो ये किस लेवल तक कम होने पे चिंता करने की बात होती है या हमें हॉस्पिटलाइज जाना चाहिए, किस लेवल तक?
देखिए, डेंगू में प्लेटलेट कम होने से खतरा की संभावना अगर 1% है तो आप ये मान करके चलिए उसमें पानी के अभाव से और बाकी जो एक कैपिलरी लीक शुरू हो जाते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है शरीर में, वो कहीं ज्यादा घातक होता है, वो 100 गुना ज्यादा घातक है। प्लेटलेट अगर बहुत कम भी हो जाए तो भी उसमें संभावना खून बहने की या मरीज को दिक्कत होने की बहुत कम होती है, और उसका इलाज है कि आप ब्लड दे सकते हैं मरीज को। लेकिन अगर जो है आपका कैपिलरी लीक शुरू हो जाते हैं, आपके जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें से अगर पानी लीक करना शुरू हो जाता है, पेट में फेफड़े में अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये एक बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है, और ऐसे में मरीज को बचाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप प्लेटलेट की चिंता ना करिए। ये हम लोगों में बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है कि हम लोग प्लेटलेट देखते रहते हैं। प्लेटलेट से 99.99% लोगों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये ध्यान रखें, प्लेटलेट के ऊपर देखना बंद कर दें।
जी, इंदौर मध्य प्रदेश से अनिल कवचाले जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अनिल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए।
सर हमारा सवाल ये है, 2-3 दिन से बुखार आया था और प्लेटलेट काफी कम हो गए और अब पैरों में काफी दर्द,
तो देखिए 1-2 दिन से अगर आपको बुखार नहीं है, प्लेटलेट कम है, तो कोई भी बीमारी हो सकती है जो वायरल रही होगी। लेकिन डेंगू में एक चीज ध्यान रखिए कि बुखार उतरने के बाद ही जटिलताएं शुरू होती हैं कई स्थितियों में, तो ये नहीं है कि आप नजरअंदाज कर दीजिए कि बुखार उतर गया है तो और कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर बुखार उतर गया है उसके बाद भी 2-3 दिन आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, खाना पीना पूरा रखें, पानी की शरीर में कमी नहीं होना चाहिए और कहीं भी शरीर के हिस्से से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें।
काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है इस मामले में। और इस बीच हमारे साथ आकाश जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी बिहार से। आकाश जी आपका सवाल क्या है?
नमस्कार जी।
जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
सर मेरा सवाल है सर कि अगर डेंगू बुखार हो जाए सर, तो सर घरेलू खाना जो होता है सर, गर्म दूध हो गया, उबला हुआ अंडा हो गया, ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते?
डेंगू बुखार में खाने में किसी भी चीज में कोई मनाही नहीं है, लेकिन हाँ कई बार बुखार बहुत ज्यादा होता है तो जिन चीजों में ज्यादा फैट होता है, चिकनाई होती है, वो हजम नहीं होती है। या जैसे कि एक श्रोता ने पूछा था कि कई बार जो है जिगर पे असर होता है, तो आप भारी भरकम जो खाने हैं वो नहीं खा पाते हैं, तो आपको उस समय हल्का खाना लेना चाहिए, क्योंकि आप मरीज को, बुखार वाले मरीज को नहीं चाहते हैं कि उसे एक दिक्कत और हो जाए कि उल्टी हो रही है या कोई और परेशानी हो रही है, हाजमे की दिक्कत हो रही है।
डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर की बातें सुनकर के घर पे ही खाने के मामले में कई चीजें एक्सपेरिमेंटल रूप में शुरू कर देते हैं, उनको कैसी सावधानी बरतनी चाहिए?
देखिए निखिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें मैं एक कदम और आगे जाऊंगा और मैं कहूंगा कई लोग जो है देसी इलाज और पपीते के पत्ते और बड़ी सारी चीजें भी खिलाते हैं, इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जो मरीज को खाना वैसे ही नहीं पसंद आ रहा है उसको आप पत्ते खिलाएं तो मुश्किल काम होता है मरीज के लिए, ये बहुत ही दिक्कत का काम है, तो उसको जो उसको मन करता है वो खिलाए और जबरदस्ती में ऐसी चीजें उसको ना ठूसाएं कि वो खाने में उसे बहुत परेशानी हो।
जी शिमला से राकेश जी फोन लाइन पर हैं, राकेश जी आप सवाल पूछिए।
नमस्कार।
नमस्कार,
मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से।
जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये, जैसे जैसे हिमाचल में डेंगू मच्छर नहीं होते, लेकिन अगर हम मच्छर को हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि पानी को तो हम खाली करते हैं।
देखिए ऐसा है, ये नहीं सोचिए कि हिमाचल में डेंगू मच्छर नहीं होते हैं, मच्छर आपके पास ना बस में बैठ के जैसे लोग आते हैं ना घूमने के लिए, उनके साथ आ जाते हैं मच्छर, और वो जब तक मरते नहीं है तब तक वो आपको डेंगू दे सकते हैं, तो कम मात्रा में वहां पे होते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन संभव प्रयास जरूर करना चाहिए। पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा नहीं होने दें, अगर इकट्ठा कहीं भी हो रहा है तो उसको फौरन उलट दें, ये बहुत जरूरी है जिससे कि मच्छर वहां ना पनपे। आजकल जो है जो हिमाचल है या जो हिल्स हैं पहाड़ हैं उन पे भी जो है वातावरण और में बदलाव आ रहा है और गर्मी ज्यादा होने लगी है, तो ये नहीं सोचिए कि वहां पे डेंगू नहीं होगा। थोड़े दिनों में जैसे अभी मेरे से यहाँ बैठा हुआ था यहाँ पे तो बात हो रही थी कि 20वीं मंजिल पे मच्छर कैसे पहुंच जाता है, तो जहां आदमी जैसे जाता है वैसे मच्छर भी उसके साथ साथ चला जाता है, तो वैसे वो संभल के रहना जरूरी है। ये नहीं सोचिए कि ऊपर पहाड़ों पे नहीं होगा, अगर गर्मी बढ़ रही है जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो इस स्थिति में मच्छर भी वहां पे पनपने लगेंगे, संभल के रहना जरूरी है हम लोगों का।
रवि जवालिया जी हैं हरिद्वार से हमारे साथ में, रवि जी आपका प्रश्न क्या है?
हाँ सर नमस्कार, निखिल कुमार सर
नमस्कार,
और सर डॉक्टर साहब का भी नमस्कार, और आप सभी को अग्रिम त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी आपको भी शुभकामनाएं, अब प्रश्न पूछिए।
हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर कि जो डेंगू है ये परमने से होता है या किसी अन्य मक्खी मच्छर वगैरह इंसेक्ट वगैरह होता है ना, उससे भी हो सकता है क्या सर ये, ताकि इससे हमारे आम गाँव में भी इस प्रकार की जागरूकता हो? धन्यवाद सर।
देखिए डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर जो है आमतौर पे फ्रेश वाटर या ताजे पानी में जो है जो दो तीन दिन से ही इकट्ठा होता है उसमें ही पनपता है, लेकिन फिर भी आप चाहे गांव में हो शहर में हो, गांव में थोड़ा ये कम रहता है क्योंकि वहां पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रहा है, शहरों में तो कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि पानी को आप उलटना बहुत ही मुश्किल है, तो पानी का इकट्ठा जो है वहां पे आप डेंगू या मलेरिया दोनों ही चीजें हो सकती हैं। मलेरिया जो है इकट्ठे पानी में जो काफी टाइम तक रहता है उसमें मच्छर पैदा होता है एनोफिलिस जो है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, इलाज करना भी और रोकथाम करना दोनों बहुत जरूरी है।
केशव जी हैं दिल्ली से अगले श्रोता हमारे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, केशव जी सवाल पूछिए।
सर सवाल मेरा ये है, सर जैसे वैक्सीन बनी थी मैं उसके टाइम पे कोरोना के टाइम पे 6 महीने में हमारे वैज्ञानिक ने तैयार कर ली थी, तो ऐसे हमारे जैसे डेंगू और मलेरिया का है कितने साल से चलता आ रहा है, तो इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन सकती अभी तक?
बिल्कुल बता फरमाया आपने, जो है डेंगू की वैक्सीन ऐसा नहीं है नहीं बनी है, और कई देशों में यूज भी हो रही है ये डेंगू वैक्सीन जो बन करके है, लेकिन इसमें दूसरी चीज जो है भारत में जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी तब ये देखा गया कि यहाँ पे इतना फायदा नहीं हो रहा है बल्कि कुछ नुकसान हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने जो वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन डेंगू की भारत में नहीं लाई गई, लेकिन हाँ आजकल ICMR के तहत डेंगू वैक्सीन पे बहुत ज्यादा जैसा आपने कहा जो है शोध हो रहा है, और उम्मीद करते हैं 2-3 साल में शायद हमारे पास डेंगू के लिए एक कारगर वैक्सीन उपलब्ध होगी।
डॉक्टर साहब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डेंगू जो है ये किन इलाकों में ज्यादा फैलता है और अक्सर फैलता रहता है, और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो वो किन मामलों में बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है?
देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल जी, डेंगू जो है अगर आप मानेंगे तो 20-25 साल पहले इतना ज्यादा अखबारों में और एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन में जितना खुदाई जितना बनाई होती है उसमें पानी का इकट्ठा होना एक बहुत लाजमी चीज है
जी।
और ये क्योंकि साल भर चलता रहता है तो मच्छरों को भी जो है वो एक जगह मिल जाती है पनपने के लिए, और क्योंकि कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं 3-4 साल वो चलती है, और शहरों में आप देख रहे हैं निर्माण कार्य जो है बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट का जो है पेस पे चल रहा है, तो इसमें ऐसे में हमें मच्छरों को पलने ना देना कई बार एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कई बार डेंगू को कहा जाता है डिजीज ऑफ अर्बनाइजेशन, कि ये डेवलपमेंट के साथ साथ ये डेंगू का केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें रोकथाम करना बहुत जरूरी है, और जागरूकता जैसे ऑल इंडिया रेडियो कर रहा है ये एक बहुत ही अच्छा कदम है मैं कहूंगा।
किन मामलों में गंभीर हो जाता है?
ये जो है गंभीरता इसके कई प्रकरण हैं, और इसमें मैं कहूंगा कि पहला इन्फेक्शन कई बार जैसे है वो इतना सीरियस नहीं होता, दूसरा इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस हो जाता है। ऐसे ही जो बड़ों में उम्रदराज लोगों में या बच्चों में होता है उनमें दिक्कत होती है, और कई लोग जैसे कि सही टाइम पे इलाज नहीं करा पाते हैं या देर में डॉक्टर के या अस्पताल में जाके भर्ती हो पाते हैं, तो उन कंडीशंस में ये जटिलताओं का कारण और कभी कभार मृत्यु भी हो जाती है।
राजेश नेमा जी हैं सिंहपुर बड़ा मध्य प्रदेश से। राजेश जी प्रश्न पूछिए आपका।
सर्वप्रथम तो दीपाली मस्त आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी आपको भी शुभकामनाएं।
जी राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है यदि बीपी पेशेंट को डेंगू हो जाए तो अपनी देखभाल किस तरह से करे?
जी
देखिए बीपी के मरीज जो है ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको जो है रोकथाम और ध्यान वैसे ही देना है जैसे दूसरे मरीजों को करना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने बताया डेंगू के मरीजों में दिक्कत होती है जब उनके शिरा धमनियां जो आर्टरीज वेन्स हैं उनमें से ब्लड लीक करने लगता है, तो अगर वो ब्लड लीक करने लगता है पानी लीक करने लगता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जिन रोगियों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उनमें ब्लड प्रेशर हो सकता है कि ज्यादा रहता है तो नॉर्मल हो और वो डेंगू की कॉम्प्लिकेशन जटिलता की तरफ जा रहे हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा को डॉक्टर साहब से बदलवाना पड़ेगा या एडजस्ट करवाना पड़ेगा, तो ये जरूरी है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अगर डेंगू होता है तो वो जरूर डॉक्टर साहब को बताएं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है और उस तहत उनका इलाज उस हिसाब से किया जाना चाहिए।
फरुखाबाद से सतीश जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सतीश जी आपका सवाल क्या है?
हेलो सर नमस्ते।
नमस्ते, सवाल पूछिए।
सर ये कहना चाहता हूँ जैसे इंसान को जैसे डेंगू हो जाए और कि प्लेटें कम हो जाए तो उसमें सर क्या खिलाना चाहिए? मैंने एक बार डेंगू हो गया था तो उसमें सर मैंने पपीते के पत्ते खाए और ये चीजें फायदेदार रहेंगी, लेकिन और क्या क्या खाना चाहिए सर ये बता सकते हो?
साधारण खाना खाएं वो ज्यादा फायदा करेगा, पपीते के पत्ते जो है इतने नहीं फायदा करते, और दूसरी चीज है प्लेटलेट्स के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए, वो डॉक्टर के ऊपर रहने दीजिए कि वो कब कहते हैं कि प्लेटलेट्स वाकई में खतरनाक है। मैंने जैसा बताया डेंगू के मरीज को नुकसान प्लेटलेट्स कम होने से इतना नहीं होता है जितना कि उसके खून में से पानी का रिसाव बाहर होने लगता है, उससे ज्यादा दिक्कत होती है और जान भी उसी कारण से जाती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से किसी की जान नहीं जाती है।
मथुरा से चौधरी महेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। महेंद्र जी स्वागत है आपका, आपका प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
जी आदरणीय डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार
आकाशवाणी स्टूडियो में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी श्रोताओं की ओर से बहुत ही अच्छा विषय चुना है आप लोगों ने आज।
जी प्रश्न पूछिए।
जी मैं जानना चाहता हूँ जैसे शुरुआती लक्षण क्या हैं जब ये मच्छर काटता है डेंगू हमें बनता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमें डेंगू है?
ये शुरुआती लक्षण आमतौर पर वायरल बुखार की तरह बुखार ही होता है, लेकिन हाँ इसमें कई बार अगर आपको बहुत बदन तोड़ बुखार है, आंखों और सर में दर्द है, तो ये एक हम मान सकते हैं कि हाँ शायद आपको डेंगू बुखार होने की संभावना ज्यादा है। बाकी कई बार लाली आ जाती है शरीर पे, दाने निकल आते हैं शरीर पे, कभी मसूड़ों से खून आ सकता है या कहीं और से आपको खून आता दिखता है, पेट फूल जाता है, चक्कर आता है, बदन दर्द है, ये सब चीजें आमतौर पर हो सकती हैं।
एक और श्रोता दिल्ली से हमारे साथ में है तपस, जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे। तपस जी प्रश्न पूछिए।
जी सर नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा सवाल है किसी का अगर बुखार हुआ है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि इनका डेंगू ही बुखार हुआ है, कैसे लक्षण कैसे क्या है, क्या क्या लक्षण होता है,
जांच के बारे में भी जानना चाहते हैं।
हाँ, तो बुखार में बदन तोड़ बुखार जैसा इसे कहते हैं, आंख में के पीछे दर्द रहता है या आंखों में दर्द हो सकता है, तो उसमें कई बार जांचें कराना जरूरी रहता है। तो दूसरे तीसरे दिन अगर बुखार आपको रह रहा है तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी जिसे कहते हैं वो करा लेना जरूरी है, जिसलिए कि एक बेसलाइन हो जाए। उसके ऊपर हो सकता है इलाज कराना जरूरी नहीं हो, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि उसके साथ बुखार के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया बुखार हो सकता है, तो इसमें टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। इसमें जांच के लिए जो है डॉक्टर साहब आपको जिसके पास भी जाएंगे तो वो अलग अलग जांचें होती हैं, कभी कभार एंटीजन टेस्टिंग होती है या कभी कभार एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। तो अर्ली फेज में जो है हम लोग एंटीजन टेस्टिंग कराते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो जाती हैं शरीर में।
पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। पांडे जी आपका सवाल क्या है?
हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है।
अक्सर
क्या कह रहे हैं,
किस तरह के मच्छरों के काटने से होता है और कैसे बढ़ता है?
देखिए, जैसा मैंने बताया कि डेंगू के जो फैलाने वाले मच्छर हैं वो ताजे पानी में या जो दो तीन दिन से ही इकट्ठा पानी है उसी में पनपते हैं, जो बनिस्पत मलेरिया करने वाले मच्छरों से फर्क होते हैं। जो काफी दिन से पानी इकट्ठा होता है उसमें मलेरिया के मच्छर एनोफिलिस मॉस्किटो पनपता है, ये ईडीज मॉस्किटो होता है जो कि डेंगू फैलाता है, और ये यूजुअली दिन में काटता है। आमतौर पर जो बनिस्पत एनोफिलिस मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है जो कि सवेरे या रात को काटते हैं।
डॉक्टर अनुपम, मच्छरों से बचने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करना फायदेमंद होता है, मच्छरदानी का या फिर जो बाजार में हमारे पास अन्य ऑप्शंस उपलब्ध हैं वो?
देखिए, मेरा मानना है जहां बारिश आती है उसके बाद चाहे कितनी भी गर्मी और उमस हो तो कुछ चीजें हमेशा कही जाती हैं करने के लिए, कि कपड़े जो है फुल स्लीव्स के पैंट्स पहने, निकर नहीं पहने, और जो है डार्क कपड़े नहीं पहने क्योंकि वो मच्छरों को आकर्षित करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने और कोने कोने में ना बैठें, झाड़ियों में, बड़ी हुई घास में, इन सब चीजों में जहां तक है नहीं जाएं, क्योंकि मच्छर ये ग्रीनरी में और ऐसी जगहों पे ज्यादा मिलने की और काटने की संभावना होती है। खास तौर से आउटडोर जो है सवेरे और शाम को भी मच्छर ज्यादा काटते हैं तो उस समय भी कहा जाता है कि नहीं रहे। इससे बाकी बचाव करने के लिए कोशिश करें, घर में अगर जाली वाले दरवाजे हैं तो वो आपका बचाव करते हैं, और जैसा आपने कहा आजकल जो है मच्छरदानी अगर आप लगा करके सो सकते हैं तो रात को फिर आप बेचैनी, मतलब बिना चैन की नींद सो सकते हैं अच्छे से, कोई आपको बेचैनी नहीं होगी या रात को नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मच्छर भी जो है आपको रात को परेशान नहीं करेंगे और बीमारी से भी बचे रहेंगे।
और इस बीच रायबरेली उत्तर प्रदेश से रमाशंकर वाजपेयी जी हमारे साथ आ चुके हैं फोन लाइन पर। रमाशंकर जी, जी नमस्कार।
मैं ये पूछना चाहता था कि डेंगू से बचाव के लिए केवल जनमानस को ही सजग होना जरूरी है या स्वास्थ्य विभाग भी सजग रहे ताकि डेंगू वगैरह फैलने के पहले ही जो है इसकी दवाई की जा सके, फाकी की जा सके और ये जो ये फैल ना पाए?
जी डॉक्टर साहब,
बहुत सही सवाल है आपका, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तो जागरूक और सजग रहना ही चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन अगर हर नागरिक, जनमानस जो आपने कहा, तो हर नागरिक अगर अपना फर्ज निभाएगा और पानी नहीं इकट्ठे होने देगा तो सरकार का और स्वास्थ्य कर्मियों का और स्वास्थ्य विभाग का काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये संभव नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग जो है हर आदमी के घर में या हर झाड़ी में जाकर के देखे, लेकिन अगर हर नागरिक अपना फर्ज समझ करके ये काम करता है तो हमें डेंगू से जरूर निजात मिल सकती है।
और डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को डेंगू हो चुका है उसे उबरने के लिए कितने दिन का आराम करना चाहिए और उसे अपना भोजन किस तरह का रखना चाहिए?
ये जो है ये सवाल बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि हर आदमी का अपना इम्यून सिस्टम अलग होता है, लड़ने की क्षमता अलग होती है, और कई लोगों में डेंगू बुखार हो सकता है कि एक आधा दिन बुखार रहे और उसके बाद मरीज को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो और बुखार के दौरान भी ज्यादा पीड़ा ना हो, लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बदन दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद उन्हें कमजोरी भी जो है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक रह सकती है। इसलिए ये कहना कि कौन मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा कौन नहीं ठीक हो जाएगा ये बहुत मुश्किल है। और जैसा मैंने कहा पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, लेकिन जो मरीज बर्दाश्त कर सके और हजम कर सके। अगर मरीज को दिक्कत ज्यादा है और वो नहीं ले पा रहा है ज्यादा, तो उसे हल्का खाना खिलाएं और बुखार पे उतरने की कोशिश करें कि उसे ज्यादा देर बुखार ना रहे।
डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये भी है कि क्या किसी गर्भवती माँ जिसके मतलब अभी बच्चा होने वाला है, तो क्या उस बच्चे तक भी संक्रमण हो सकता है यदि उस महिला को डेंगू हुआ हो?
देखिए डेंगू बुखार अगर जिन गर्भवती महिलाओं को हो रहा है उनमें जटिलताएं होने की संभावना काफी रहती है और उनमें बच्चों को नुकसान होने की भी संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन गर्भवती माँ से बच्चे को संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम होता है। और अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें ट्रांसमिशन यूजुअली नहीं होता है या आमतौर पे बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए उतनी दिक्कत नहीं होती।
तो अगर रोकथाम की हम बात करें तो कई बार तमाम चीज़ों का जिक्र होता है कि हमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, अपने जैसा कि आपने बताया कपड़े भी फुल स्लीव के पहनने चाहिए, फिर भी कभी कभी ना चाहते हुए भी मच्छर काट ही लेता है, तो उस स्थिति से बचने के लिए क्या कर सकते हैं?
देखिए मच्छर काटने के लिए जैसा कि आपने कहा निखिल जी, मच्छरदानी का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं
जी।
और दूसरा ये है कि काफी जो है आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, उनको लगा सकते हैं जहां आप कपड़े नहीं पहन सकते, हथेलियों पे या पैरों पे। ऐसे ही जो है आजकल बैंड्स भी आते हैं जो लोग पहनते हैं
जी।
और कॉइल्स भी आती हैं और आजकल तो अगरबत्तियां भी आ रही हैं जो हर्बल प्रिपरेशन से बन रही हैं और मच्छरों को कुछ देर के लिए बेहोश करने के लिए काफी सक्षम रहती हैं।
व्यास नंद शुक्ला जी हैं गोरखपुर से हमारे साथ में जो अपना प्रश्न पूछेंगे। व्यास जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
मेरा सवाल है यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसको उपचार किया है और डेंगू वाले मरीज का पहचान किया है?
डेंगू का उपचार जो है वायरल बुखार है, तो इसमें आपको कोई अलग से कोई एंटीबायोटिक जैसी दवा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ आप जो है उसको वायरस के बुखार के लिए, बुखार जैसे मैंने कहा बुखार बहुत ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, तो बुखार उतारने की दवा दिलाएं, उसमें पैरास्टामोल जैसी दवाएं दिलाएं, बाकी दवाएं जो बुखार के और बदन दर्द के लिए होती हैं वो ना दिलाएं तो बेहतर है। और अगर मरीज नहीं खा पी पा रहा है तो उसको आपको फिर अस्पताल में दिखाना एक बार जरूरी है।
और डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे श्रोताओं को जो भी आप बातें बताना चाहें या कहना चाहें कि जिन बातों का ध्यान रखना सामान्य रूप से बहुत जरूरी, खासतौर पे उनके लिए जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना ध्यान तो नहीं रख सकते, तो माँ बाप उनका कैसा ध्यान रख सकते हैं?
बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो है उनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनमें भी डेंगू की दिक्कत ज्यादा तकलीफ होने की जटिलता होने की संभावना रहती है। तो ऐसे बच्चों को आप फुल स्लीव्स पहना करके कमीज पूरी पहनाएं, कपड़े ढके होने चाहिए, जो है पूरा शरीर ढका होना चाहिए, और जो है उनको जैसे आजकल आर्म बैंड्स पहना करके देते हैं जिससे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं, या क्रीम लगा करके भेजें। और बच्चों को हिदायत दें कि झाड़ी वगैरह में कोने कोने में नहीं खेलें, खुले ग्राउंड्स में खेलें और बड़ी घास में ना खेलें, ऐसे से काफी हद तक बचाव हो जाता है और हम बच्चों को अपने संभाल के रख पाएंगे।
और साथ में उनका खाने पीने का भी ख्याल रखें अच्छे से।
बिल्कुल खाना पीना समय पे और पानी ज्यादा लेना जरूरी है,
पानी का इंटेक आवश्यक होता है।
हाँ पानी का इंटेक बहुत जरूरी है सभी के लिए।
और डॉक्टर अनुपम प्रकाश फिलहाल अभी कार्यक्रम हमारा निर्धारित समय की ओर है जहां पर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, तो हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अपने प्रश्न पूछे, और आपसे चर्चा के लिए डॉक्टर अनुपम प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसमें हमारे साथ थे लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम प्रकाश। इस कार्यक्रम को यदि आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। फिलहाल निखिल को दीजिए इजाजत, बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें आकाशवाणी का गोल्ड चैनल। नमस्कार।